एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने।
रेडियो प्लेबैक इंडिया।
रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कुछ जाने पहचाने और कुछ कम सुने फिल्मी गीतों की रचना प्रक्रिया, उनसे जुड़ी दिलचस्प बातें और कभी कभी तो आश्चर्य में डाल देने वाले तथ्यों की जानकारी को समेटता है रेडियो प्लेबैक इंडिया का ये स्तंभ एक गीत 100 अफसाने। आज की कड़ी में प्रस्तुत है 1952 की फिल्म आसमान के गीत, जब से पी संग नैना लागे के बहाने। संगीतकार ओपी नैयर और लता मंगेशकर के बीच अनबन का विश्वसनीय सूत्रों से इतिहास। दोस्तों, क्या आपको पता है 1952 की फिल्म आसमान के एक गीत की रचना ओपी नैयर साहब ने लता मंगेशकर से गवाने के उद्देश्य से की थी? फिर क्यों नहीं गा सकी लता जी ये गीत, और इसके फलस्वरूप दोनों के संबंध में कैसे दरार पड़ी? क्यों गई लता जी संगीतकारों के एसोसिएशन में नैयर साहब की शिकायत करने? दोनों के बीच की तिक्तता कैसे बढ़ती ही रही, जानिए आज के इस अंक में। आज के इस अंक के लिए शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और प्रस्तुत कर रहे हैं राजीव पटेरिया।
स्वर्ण युग के संगीतकारों में बहुत कम ऐसे संगीतकार हुए हैं जिनकी धुनों पर लता मंगेशकर की आवाज न सची हो, बल्कि यूं भी कह सकते हैं कि हर संगीतकार अपने गाने लता जी से गवाना चाहता था। ऐसे में अगर कोई संगीतकार उम्र भर उनसे ना गवाने की कसम खा ले तो इस बात से लोगों के माथे पर शिकन आना लाजमी है। ओपी नैयर एक ऐसे ही संगीतकार हुए हैं जिन्होंने कभी लता से गाना नहीं गवाया। अपनी पहली ही फिल्म के समय किसी मनमुटाव के कारण जो दरार लता और नैयर के बीच पड़ी, फिर वो कभी नहीं भर सकी। लता और नैयर दोनों से ही लगभग हर इंटरव्यू में ये सवाल जरूर पूछा जाता रहा है कि आखिर बात क्या हो गई थी कि दोनों ने कभी एक दूसरे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया, पर हर बार ये दोनों असल बात को टालते रहे। यूं तो हजार मुंह हजार बातें, किन पर यकीन करें किन पर ना करें, ये मुश्किल सवाल है। पर आज हम जिन विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारियां देने जा रहे हैं वो कोई और नहीं, खुद नैयर साहब और लता जी के साक्षात्कार और राजू भारतन की किताब से मिली जानकारियां हैं, जिन पर बाकी दूसरे सूत्रों से ज्यादा भरोसा किया जा सकता है। नैयर साहब को जब विविध भारती के दास्ताने नैयर कार्यक्रम में पूछा गया कि क्या वजह है कि जो उन्होंने कभी लता जी से अपना कोई गीत नहीं गवाया, तो उन्होंने खुदा का वास्ता देते हुए कहा, 78 साल की मेरी उम्र है, मुझे मरते वक्त जान देनी है, तो मैं आपको बताऊं कि उनसे कोई झगड़ा नहीं है, ना मैंने उन्हें कभी अप्रोच किया, उनकी आवाज मेरे म्यूजिक को सूट नहीं करती, मुझे चाहिए सेलेक्टिव वॉइस जिसकी वॉइस में वेट हो। वो मुझे गीता दत्त, शमशाद बेगम और आशा भोसले में मिला। आशा भोसले बड़ी अच्छी गायिका हैं, लेकिन नंबर वन गायिका लता मंगेशकर ही रहेंगी और नंबर दो आशा भोसले ही रहेंगी। इस तरह से नैयर साहब तो साफ मुकर गए इस बात से कि लता जी के साथ उनकी कोई भी अनबन हुई थी। अब लता जी क्या कहती हैं इस बारे में? तमाम साक्षात्कारों में लता जी यही कहती आई हैं कि उनका और नैयर साहब का कोई झगड़ा तो था ही नहीं, ना ही उनके दिल में नैयर साहब के लिए ऐसा कुछ था कि भाई ये बहुत बुरा आदमी है, और ना ही नैयर साहब के दिल में। लता जी के शब्दों में, इतना मैं जानती हूँ कि जब वो पहली बार आए और वो शायद पांचोली साहब की फिल्म कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे बुलाया था और एक गाना उन्होंने मेरे लिए निकाला था, पर क्या हुआ कि उस वक्त मुझे साइनस की बहुत ज़्यादा तकलीफ थी और वो गाना रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो गाना रिकॉर्ड ना होने के बाद अब मैं सोच रही हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने फिर सोचा हो कि अब लता से काम नहीं लेंगे। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सच कही है कि जो उनका स्टाइल था वो शायद मेरे गले से अच्छा नहीं लगता, पर वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे और उन्होंने बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है, और जो म्यूजिक उस वक्त चल रहा था उससे हट के उन्होंने अपना एक स्टाइल उस वक्त शुरू किया था, जैसे कि मास्टर गुलाम हैदर ने। नैयर साहब और लता जी का बयान जानने के बाद अब हम इस स्थिति पर पहुंचे हैं जहां एक तरफ नैयर साहब ने साफ मना कर दिया था कि उन्होंने कभी लता जी को अप्रोच किया, दूसरी तरफ लता जी ने बताया कि एक गाना नैयर साहब ने उनके लिए कंपोज किया था जिसे वो साइनस की बीमारी की वजह से नहीं गा सकें। जो बात दोनों ने बताई वो ये कि दोनों में कोई झगड़ा नहीं था। चलिए अब जरा हकीकत पर नजर डालें। जो प्रकाशित हुई है हरीश भिमानी लिखित मशहूर किताब इन सर्च ऑफ लता मंगेशकर में, और जिसका पंकज राग लिखित किताब धुनों की यात्रा में भी उल्लेख मिलता है। ओपन एयर की पहली फिल्म थी 1952 की आसमान, जिसके निर्माता थे दलसुख पांचोली। ये फिल्म नैयर साहब को उनके एक मित्र एस एन भाटिया की मदद से मिली। इस फिल्म के कुछ गीत उन्होंने गीता रॉय के लिए कंपोज किए, तो एक गीत ऐसा था जिसकी रचना उन्होंने लता मंगेशकर की गायन शैली को ध्यान में रखकर की थी। गीत के बोल थे, जब से पीसंग नैना लागे तब से ना ही लागे नैन, हो गिन गिन घड़ियां दिन काटूं मैं, गिन गिन तारे काटूं रैन, पिया आन सखी मोरे नैन में, मोरी निंदिया चुराए गयो। इस गीत को लता जी ही गाने वाली थी, पर कुछ ऐसा हुआ कि दो तीन दिनों तक लगातार अन्य रिकॉर्डिंग्स में व्यस्त रहने के कारण वो रिहर्सल पर नहीं आ सकें। नैयर साहब ने भी कारण जानने की कोशिश नहीं की और पांचोली साहब से लता जी की शिकायत कर दी। जब तक लता जी बात संभालती तब तक इस वाक्य को बढ़ा चढ़ाकर ऐसा रंग दिया जा चुका था कि लता जी और नैयर साहब के बीच एक अटूट गलतफहमी जन्म ले चुकी थी, और लता जी के बाद इस गीत को राजकुमारी से गवा लिया गया। लता जी और नैयर साहब के बीच का मनमुटाव यहीं पर खत्म नहीं हुआ। नैयर साहब की पहली तीन फिल्में आसमान, छमछमा छम और बाज तीनों ही बुरी तरह फिटी, पर चौथी फिल्म के रूप में 1954 की फिल्म आर पार के गीतों ने रातों रात पूरे देश में धूम मचा दी। ये गाने इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए कि नैयर साहब रातों रात प्रथम श्रेणी के संगीतकार बन गए और कई फिल्मकार उन्हें अपनी फिल्म में साइन करने के लिए लाइन लगाने लगे। राजू भारतन की प्रसिद्ध किताब लता मंगेशकर अ बायोग्राफी बाय राजू भारतन के अनुसार उस समय निर्माणाधीन फिल्म महबूबा में संगीतकार रोशन और मंगू में मोहम्मद शफी संगीत दे रहे थे। इन दोनों फिल्मों के निर्माताओं ने नैयर साहब की प्रसिद्धि को देखते हुए इन दो संगीतकारों को हटाकर नैयर साहब को इन फिल्मों के संगीत का जिम्मा दे दिया। नैयर साहब के लिए ये भले ही खुशी की बात रही हो, पर इन दोनों संगीतकारों के लिए तो ये अपमान ही था। लता जी नैयर साहब से नाराज तो थी ही, इस बात से वो और भी ज्यादा नाखुश हो गई और इस बात को वो ले गई संगीतकारों के सिनेम म्यूजिक डायरेक्टर्स एसोसिएशन तक, जिसके सभापति थे संगीतकार अनिल विश्वास। अनिल विश्वास, नौशाद वगैरह संगीतकारों के हस्तक्षेप के बाद इन दो फिल्मों में नैयर साहब के लिए कोई गायिका गाने को राजी नहीं हो रही थी। इस मुश्किल घड़ी में नैयर का साथ दिया शमशाद बेगम और आशा भोसले ने। फिल्म महबूबा में कुछ गीत रोशन के थे और कुछ नैयर साहब के, जिनमें शमशाद बेगम की आवाज़ थी। इसी तरह मंगू के कुछ गीत मोहम्मद शफी के संगीत में थे और कुछ गीत ओपी नैयर के संगीत में। नैयर साहब के गीतों में आवाज आशा भोसले और शमशाद बेगम की थी। ये दोनों फिल्में मिले जुले रूप से दो दो संगीतकारों के संगीत में ढलकर प्रदर्शित तो हो गई, पर लता मंगेशकर और ओपी नैयर के बीच जो गहरी दरार पड़ गई थी वो फिर कभी नहीं भर पाई। बरसों बाद नैयर साहब का नाम जब मध्य प्रदेश शासन प्रदत्त लता मंगेशकर पुरस्कार के लिए चुना गया तो नैयर साहब ने पुरस्कार लेने से साफ मना कर दिया। आज फिल्म आसमान के गीत विस्मृत हो चुके हैं, राजकुमारी का गाया और गीतकार प्रेम धवन का लिखा यह गीत भी ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ और आज यह एक भूला बिसरा नगमा बन चुका है। पर इस बात के लिए यह गीत जरूर याद किया जाएगा कि नैयर साहब ने इस गीत को लता मंगेशकर के लिए ही संगीतबद्ध किया था। जाने कैसे कैसे गीत बने होते अगर लता जी गाती नैयर साहब के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस अंक का आलेख तैयार किया था सुजॉय चटर्जी ने। इस स्तंभ के संचालक संज्ञा टंडन के साथ मुझे यानी राजीव पटेरिया को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
एक गीत सौ
रेडियो प्लेबैक इंडिया।